स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 10 नवंबर दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन।
वो माइनॉरिटीज जो अपने आप को अनसेफ समझते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नाराज हैं इलेक्शन आउटकम से।
500 और 1000 के नोट को अवैध घोषित करने के बाद नोट बदलने के लिए आज बैंकों में लगी लंबी कतार। नोट संबंधी केंद्र सरकार के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी हुई और तल्ख। मुलायम सिंह और मायावती ने कहा यूपी चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला।
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने फैसला लिया उसी दिन से गाना बजाई बड़े पैमाने पर शुरू।
होंगी आपकी चिट्ठियां और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार इकबाल अहमद से। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के पास जमा प्रदर्शनकारियों में से पुलिस ने 15 को गिरफ्तार भी किया है। लॉस एंजल्स में विरोध कर रहे लोग तख्ती लिए हुए थे जिस पर लिखा था ट्रंप को डिपोर्ट करो, लिंग के आधार पर भेदभाव और नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष करो। कुछ लोगों ने उनके पुतले भी जलाए। व्हाइट हाउस के सामने कई लोगों ने हाथों में मशाल लिए जुलूस निकाले। कई और शहरों में लोग नारे लगा रहे थे नॉट माई प्रेसिडेंट, यानी कि ट्रंप मेरे राष्ट्रपति नहीं है। सोशल मीडिया पर भी ये खूब ट्रेंड कर रहा है। इस बीच बुधवार शाम ट्रंप ने न्यूयॉर्क में स्थित अपने ट्रंप टावर में करीबी सलाहकारों के साथ बैठक की। उनके स्टाफ ने बताया कि इस बात पर चर्चा हुई कि ट्रंप किसको किस पोस्ट पर तैनात करेंगे। जिन लोगों के नाम इस समय ज्यादा चर्चा में है उनमें संसद के पूर्व स्पीकर न्यूट गिंगरिच, सीनेटर जेफ सेशंस और बॉब कोरकर शामिल हैं। आज ही शाम ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे ताकि सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो सके। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था इंटरपोल ने चीन के एक सुरक्षा अधिकारी को अपना नया अध्यक्ष चुना है। मेंग होंगवाई इंटरपोल प्रमुख बनने वाले पहले चीनी नागरिक हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कैंग का कहना था मिंग होंग वाई का इंटरपोल का अध्यक्ष चुने जाने पर हम लोग उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से चीन ने इंटरपोल और उसके सदस्य देशों के साथ बहुत सहयोग किया है जिसके बहुत ही अच्छे नतीजे निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून पालन में सहयोग के लिए इंटरपोल एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और हम लोग इस सहयोग को और बढ़ाना चाहते हैं। चीन इस संबंध में और अधिक जिम्मेदारी उठाने और सहयोग देने के लिए इच्छुक है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मेंग होंगवाई की नियुक्ति को अत्यधिक चिंताजनक करार दिया है। एमनेस्टी ने आरोप लगाया है कि चीन अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इंटरपोल का इस्तेमाल कर सकता है। सतलज यमुना नहर मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार का पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 असंवैधानिक है। सतलज यमुना लिंक नहर बनेगी, ये फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने लिया। हालांकि इस फैसले के विरोध में पंजाब कांग्रेस प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और अमरिंदर सिंह के साथ ही पंजाब कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अमरिंदर सिंह के इस्तीफे को ड्रामा करार दिया है। खुद को इस्लाम के स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के गढ़मूसल में इराकी सेना की बढ़त फिलहाल धीमी हो गई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, लेकिन अमेरिका के कई लोग चुनाव के नतीजे से नाराज हैं और वो देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉस एंजल्स में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क को घंटे भर तक जाम रखा। वहीं न्यूयॉर्क में हजारों लोग ट्रंप टावर के बाहर नारे लगा रहे हैं। ये लोग ट्रंप की आप्रवासन, समलैंगिक अधिकारों और प्रजनन अधिकार संबंधी नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने संबंधी योजना को लेकर अपने सलाहकारों के साथ ट्रंप टावर में बैठक की है। पूरा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
ये आवाजें हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में जमा हुए इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्ती थी जिसमें लिखा था ट्रंप को देश से बाहर भेजो। एक तख्ती पर लिखा था लिंग भेद, समलैंगिक विरोध और नस्ल भेद के खिलाफ लड़ें। कुछ लोगों ने ट्रंप का पुतला भी जलाया। कई अमरीकी शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप को अगला राष्ट्रपति चुनने पर विरोध जता रहे हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर ट्रंप टावर में ट्रंप रहते हैं और यहीं से काम करते हैं। ट्रंप टावर के बाहर हजारों लोग जमा हो गए और तरह तरह के ट्रंप विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारी आप्रवासन, समलैंगिक अधिकारों और प्रजनन अधिकारों के बारे में ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे थे। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आखिर वे सड़कों पर क्यों उतरे। एक पुरुष ने बताया,
भले ही हम कुछ बदल नहीं सकते हों, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ खड़े होने पर अच्छा महसूस हो रहा है। इन लोगों के विचार मेरे जैसे हैं और सबको पता चल जाना चाहिए कि हम इससे खुश नहीं हैं।
एक महिला ने बताया, वे एक ऐसी व्यवस्था के प्रतीक हैं जो आभासी यथार्थ में बदल चुका है, जहां हम गलत धारणाओं पर चल रहे हैं और किसी को नहीं पता कि सच्चाई क्या है। यह हमारे अंदर मौजूद ऐसा दुख है जिसे दूर किया जाना जरूरी है। एक अन्य महिला ने बताया, मुझे लगता है कि हिलेरी भी कोई मसीहा नहीं है, उनकी पृष्ठभूमि भी एक साम्राज्यवादी की है, लेकिन मुझे लगता है कि छुपे हुए नस्लवादी विचारों को लामबंद करने की डोनाल्ड ट्रंप की क्षमता अविश्वसनीय रूप से डरा देने वाली है और इसलिए यहाँ इकट्ठा होना आज बेहद जरूरी है। शिकागो, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में हजारों लोग जमा हुए। पोर्टलैंड, ओरेगॉन में प्रदर्शनकारियों ने एक अंतर्राज्यीय हाईवे को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे कि वो हमारे राष्ट्रपति नहीं हैं। सोशल मीडिया में भी लोग इस विषय पर जोर शोर से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नॉट माई प्रेसिडेंट विषय सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। जना अल अखरास एक अमरीकी मुसलमान है और इन चुनावों में उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को नकारते हैं, वे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की ट्रंप की नीतियों का पहले की तुलना में अब दृढ़ता के साथ विरोध करेंगे।
अभी हमने जो देखा वो ये है कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाकर ये विश्वास दिलाया जा सकता है कि उनके पड़ोसी और साथी कर्मचारी और उनके क्लास में पढ़ने वाले खतरनाक हैं। जो लोग डरे हुए हैं उनका डर जायज है और जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उसे समझती हूँ। जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया वे सभी नस्लभेदी नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि वे नहीं हैं। लेकिन उन लोगों में एक आत्मसंतोष है और ये आत्मसंतोष बहुत चिंताजनक है। लोगों के साथ सहानुभूति रखने की क्षमता कम है, इसलिए जो विरोध कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं चुनाव के दौरान ट्रंप के प्रयासों का बराबरी के साथ जवाब दिया जाएगा।
प्रदर्शनकारी जना अल अखरास के शब्द। एक प्रदर्शनकारी एंड्रयू हेफनर ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है कि देश भर में ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की ये तो महज शुरुआत है।
ब्यौरा सुना रहे थे अमर शर्मा। सवाल उठता है कि एक चुने हुए राष्ट्रपति का जनता क्यों विरोध कर रही है। थोड़ी देर पहले मैंने डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से बात की और यही पूछा कि ऐसा विरोध पहली बार हो रहा है या पहले भी लोग निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं।
इस हद तक के प्रोटेस्ट किसी प्रेसिडेंट इलेक्ट के खिलाफ पिछले 20-25 साल में तो नहीं देखा गया। जॉर्ज बुश के खिलाफ लोग काफी अपसेट थे 2000 में, लेकिन वो इसलिए अपसेट थे क्योंकि कंटेम्प्रेरी वक्त में पहली बार कोई ऐसा कैंडिडेट था जिन्होंने पॉपुलर वोट जीता लेकिन इलेक्टोरल वोट्स के बेसिस पे इलेक्शन हार गया था, एलन गोर। इस बार भी वैसे ही हुआ, हिलरी ने पॉपुलर वोट जीता लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से वो हार गई। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ज्यादातर माइनॉरिटीज ड्रिवन है, खासतौर से हिस्पैनिक कम्युनिटी आगे बढ़ बढ़ के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है। फेमिनिस्ट, ऑल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल के LGBT लोग, तो बेसिकली वो माइनॉरिटीज जो अपने आप को अनसेफ समझते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नाराज हैं इलेक्शन आउटकम से। और एक किस्म से एक स्ट्रैटेजी है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने पिछले जो उन्होंने माइनॉरिटीज वगैरह के खिलाफ जो स्टेटमेंट किए उसको थोड़ा बैकफुट पे उनको डिफेंसिव करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन ऐसा क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के तुरंत बाद कहा कि वो एक अमरीका के लिए काम करेंगे, वो सबके साथ मिलकर काम करेंगे, अमरीका की तरक्की के लिए काम करेंगे, फिर लोगों में क्यों उनके अंदर ये असुरक्षा देखने को मिल रही है?
मतलब उनकी जो स्पीच थी वो तो टेक्स्ट बुक वाली स्पीच थी ना। अगर कोई भी मुझसे कहता कि प्रेसिडेंट इलेक्ट आपसे स्पीच ड्राफ्ट कर दें तो मैं यही स्पीच ड्राफ्ट करता, हिलरी हो या ट्रंप हो या जिल स्टाइन हो या गैरी जॉनसन जो भी जीते, तो जेनरिक स्पीच थी, वो कोई ऐसी स्पेसिफिक स्पीच नहीं थी। उस स्पीच में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो कमेंट्स किए हैं खासतौर से हिस्पैनिक्स वगैरह के बारे में, उनका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। अगर ये बातें कहते जो मुसलमान को मैंने बैन करने की हिकमत की, उनको मेरे से फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से वो जो जिन जिन कम्युनिटीज को उन्होंने स्पेसिफिकली ऑफेंड किया, अगर उनको अश्योर करते तो शायद इतना प्रोटेस्ट नहीं होता। उनका जो स्टेटमेंट्स थे वो जेनरिक थे।
मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को लगातार मीडिया में जितनी भी रिपोर्टें आई, जितने बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा, सबने कहा कि हिलरी क्लिंटन जीत रही है, मीडिया क्या जो नब्ज है उसको पहचानने में अब कमजोर होती जा रही है, या फिर मीडिया वही कहती है जो वो महसूस करती है, जो हकीकत है उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहता?
देखिए, दो तीन चीजें हो गई हैं। 1990s आपने जो बात कहा वो 1990s में बहुत ट्रू था। 1980s में कंट्री एक्सपर्ट्स, मीडिया के डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स हुआ करते थे, जिनमें वो इन्वेस्ट करते थे और अखबार प्रॉफिट्स लाते थे। अब जब मीडिया है सिवाय टेलीविजन के 24/7, जहाँ पे वो मीडिया रिपोर्टिंग कम, एनालिसिस ज्यादा, न्यूज कम, ओपिनियन ज्यादा, इंफॉर्मेशन कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया है, तो उसमें बेसिकली ये हो गया है कि रिसर्च कम, और जो जिस तरह से इन्होंने सर्वेज वगैरह पोल किए उसमें भी काफी फ्लॉज है। मिसाल के तौर पर अफ्रीकन अमेरिकन के जो घर वगैरह होते हैं वो लैंडलाइंस नहीं होते, उनके पास सेल फोन्स होते हैं, वो गरीब हैं और स्टेबल नहीं है उनकी फैमिली, तो इस वजह से अफ्रीकन अमेरिकन को हमेशा अंडर पोल किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि अब जो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जीतने में, वो वाइट अंडर एजुकेटेड वर्किंग क्लास जो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड है, उनके काफी वोट, तकरीबन 65-70% वोट वो डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, और वो मतलब वो गरीब हैं इसलिए वो डेटाबेसेस वगैरह में नहीं आए। और दूसरी चीज ये थी कि लोग खासतौर से मीडिया में जो डोनाल्ड ट्रंप की औरतों के खिलाफ जो उनकी हरकतें थी पास्ट में और जो उनके स्कैंडल्स थे उस पे ज्यादा तवज्जो एनालिसिस पे कम रही है। तो इस तरह से मतलब मीडिया को शर्मिंदा होना चाहिए कि उनके सारे के सारे प्रेडिक्शंस गलत गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन के लोग थे वो शुरू से कह रहे थे कि देयर आर हिडन वोटर्स, और मीडिया ने उनको ट्रैक नहीं किया।
डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका की जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसको चाहते हैं कम करना। वो अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे कि अमेरिकी सेना की सीरिया के युद्ध में क्यों जरूरत है, अमेरिकी सेना की यूरोप में क्यों जरूरत है, एशिया में क्यों जरूरत है, नॉर्थ कोरिया की लड़ाई से अमेरिका का क्या लेना देना है, और वो इसको कम करना चाहते हैं। तो अब जब वो राष्ट्रपति चुने गए हैं तो क्या अमेरिका का जो पूरा आउटलुक है वो बदलेगा?
जो ग्लोबलाइजेशन था बेसिकली फॉगी बॉटम का पैदाइश था, तो अमेरिका ने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया और उसको फायदा भी हो, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन एक डबल एज सोर्ड हो गया है। मतलब अब देखें आप, इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने इसका बहुत फायदा, इंडिया ने कुछ नहीं इन्वेस्ट किया ग्लोबल इकोनॉमी में, लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया है फ्री ट्रेड का, लेकिन अमेरिका को उसका नुकसान हो गया। चाइना ने दुनिया में हर जगह सारी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स का फायदा उठाया, अमेरिका का नुकसान हो गया। अमेरिका जिन इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट कर रहा उसका फायदा दूसरे मुल्कों ने, जापान, ताइवान वगैरह लोगों से मार, तो अब ये हो गया है, इसका नुकसान ये हो गया है कि अमेरिका में एक ऐसी लोअर मिडिल क्लास पैदा हो गई है जिसकी फ्यूचर काफी अनसर्टन है, क्योंकि दे आर नॉट नॉलेज ड्रिवन। आज की इकोनॉमी नॉलेज ड्रिवन है, आपको बार बार यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, बार बार आपको डिग्रीज बदलना पड़ेगा, करियर बदलना पड़ेगा, तो ये जो मिडिल क्लास है खासतौर से उनकी उम्र 50-70 के बीच में है, वो फिर से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, लेकिन वो वाइट है, पहली बार वो वाइट तबका बन गया है, तो वो अमेरिका की रूलिंग रेस है लेकिन रूलिंग एलिट नहीं रही, तो उनका बैकलैश है। और खासतौर से ये है कि आइंदा 10-12 साल में व्हाइट रेस की जो डोमिनेंट मेजॉरिटी है वो खत्म हो रही है और क्रिश्चियनिटी भी खत्म हो रही है, तो एक किस्म से ये इलेक्शन इज द बैकलैश ऑफ व्हाइट क्रिश्चियन अमेरिका।
ये थे डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
मंगलवार की रात को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद पूरे देश में एक तरह की चिंता की लहर दौड़ गई। हालांकि सरकार ने इन दोनों नोटों को बदलने के लिए सभी तरीके भी बताए थे, लेकिन साथ ही दो दिन ATM बंद रखने के आदेश भी दिए थे। आज यानी गुरुवार को देश भर के बैंकों के खुलने से लोगों में थोड़ी राहत तो दिखी, लेकिन तमाम लोगों को पैसे बदलने या जमा करने में खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने दिल्ली में ऐसे ही कुछ लोगों से बात की।
नई दिल्ली के इस सेंट्रल इलाके में हम कस्तूरबा गांधी मार्ग पर हैं और सुबह से कतारें यहां पर लगातार हैं, लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। एक दिन में अभी ATM नहीं खुले हैं, ATM कल से खुलेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पैसा जमा करने में या निकाल पाने में सफल रहे। आपका नाम बताइए।
ललित।
कब से, क्या नाम है आपका?
ललित।
कितना समय लगा आपको, क्या किया आपने आज बैंक में आकर?
मैंने कुछ नहीं, सुबह से मार रखे थे अपने, यही काम करते और काम वाम करके अपने बैंक की लाइन में लगे और पैसा निकाला, आराम से पैसा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। मगर 4000 ही निकला, हमें ज्यादा की जरूरत थी।
और आपने क्या पुराने नोट बदले?
पुराने नोट है 1000 और 500 के।
1000 और 500 के। और उसके साथ आपको क्या ले जाना पड़ा? कुछ
आईडी प्रूफ ले जाना पड़ा, आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो,
एक उसकी आईडी प्रूफ या पहचान पत्र आपको ले जाना पड़ा।
उस पे आपको पैसा मिल जाएगा,
उसको मिल रहा है। और फॉर्म भरने में क्यों कोई मुश्किल आई है, आसानी थी?
नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है।
आपने भी निकाले क्या पैसे?
अभी सुबह निकाले हैं 4000।
कितना टाइम लगा निकालने में?
ज्यादा टाइम लगा, बस यहाँ लाइन में जो टाइम लगा 1-2 घंटे।
1-2 घंटे? एक से दो घंटे से काफी समय। पिछली बार कब याद है आपको कभी 1-2 घंटे बैंक में कभी लाइन में लगा? अगर आपको 4000 से ज्यादा की मान लीजिए जरूरत है तो क्या आप निकाल सकते हैं?
नहीं निकाल सकते,
एक दिन में नहीं निकाल सकते, नियम यही है। और आपको क्या पता है कि हफ्ते में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं?
अभी हफ्ते का तो पता नहीं है, रोज के ही सुनने में आया कि रोज के 4000 निकाल सकते हैं, कुछ देखते हैं।
जितना मर्जी अपने खाते में जमा कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप लोग अपने ATM, आपके पास ATM कार्ड है, उससे आप कितना निकाल सकते हैं एक दिन में?
2000 रुपए बताया गया, कल से 2000 रुपए निकालना चालू हो जाएगा, एक दिन में पूरे 2000 रुपए निकाल सकते हो। लोग अब कहीं भी जा रहे हैं तो 100-100 के नोट मांग रहे, 500 का तो वो ले ही नहीं रहना।
पिछले 2 दिनों में दिक्कत किस तरह की आई?
बहुत ज्यादा आई दिक्कत,
यानी बस के अंदर जा रहा, खुले मार था, बिना टिकट आना पड़ा। ATI को दिया, उन्होंने सीधा मना कर दिया, ट्रेन नहीं चलेगा नोट। फिर हमें बिना टिकट आना पड़ा। यहाँ से
पेट्रोल पंप पे जाते तो पेट्रोल पंप वाले कहते 1000 का डलवाओ या पूरे 500 डलवाओ।
आप बताइए, आप भी बैंक से निकल के आ रहे हैं?
निकालने गया था, जमा करने गया था, जमा हुआ नहीं।
क्यों नहीं हुआ जमा?
वो बोले जिसका खाता है उसको खुद को आना पड़ेगा।
जिसका खाता है तो आप किसी दूसरे के खाते में जमा करने गए थे, आपके पास पर्याप्त है?
हाँ।
अंदर क्या हाल है, कितना प्रेशर है बैंकों पर?
बैंक के ऊपर बहुत प्रेशर है।
हमारे साथ एक और शख्स है, आप क्या बता रहे थे कि इससे बड़ी लाइन है?
हाँ सर।
कहाँ से आ रहे हैं आप, कहाँ से आए हैं?
द्वारका से आए सर, वहाँ पे तो PNB कोटक में तो ब्रांच के बाहर, जैसे बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर तक चली गई है लाइन है।
और क्या मंजर है
लाइन से, ना तो किसी और काम के लिए एंट्री लेने दे रहे, बहुत बड़ी बड़ी लाइन से कैश के लिए सारे।
क्या आपको लग रहा है कि बैंक जो है वो इक्विप्ड है, बैंक में बैंकों ने तैयारी कर रखी है उपयुक्त?
मुझे तो नहीं लग रहा क्योंकि तैयारी, क्योंकि इतना टाइम लग रहा है, ड्यूटी वाला कहाँ जाएगा, छुट्टी करनी पड़ रही है अपना जो भी चेंज है। दो
आप छुट्टी लेकर आए हैं पैसे निकालने या जमा करने?
छुट्टी लेके चेंज कराने।
छुट्टी लेकर आए, बदलने आए?
हाँ जी, बदलने के लिए अपने नोट।
किस तरह की दिक्कतें हुई आपको कल, मान लीजिए?
अभी तो लाइनों में देख के ब्रांचे बदलते फिर रहे, कहाँ पे जाए, किस में लगे जाए।
ये कौन सी ब्रांच है जहाँ पर आप पहुँचे आखिर?
ये सर कम से कम रस्ते में कुछ लाइनों को देख के हम चले गए थे, कुछ हमें देखा पूछा जाके कि पासबुक के बहाने एंट्री मिले, अंदर एंट्री नहीं दे रहे वो किसी भी चीज के लिए, सिर्फ कैश का ही है आज काम सारा बैंक में।
आपको लगता है कि ये कदम जो था एकाएक बताने वाला, वो सही था या गलत था या बीच का था या?
गलत तो नहीं है, वैसे तो ठीक है इसका डिसीजन, लेकिन ये अचानक से हुआ तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, सामने करनी पड़ेंगी सामना।
सब्जी वब्जी कैसे ली आपने पिछले 2 दिनों में, गल्ला कैसे लिया?
सब्जी कुछ नहीं
लिया, अभी तो सर कुछ लिया ही नहीं, कोई भी
ज्यादा 500 का नोट दिखा रहे हैं,
कोई ले ही नहीं
जो है जेब में, सिर्फ 500 का एक कार पड़ा हुआ
है। कितने लोगों ने मना किया अभी तक 500 का?
सर खाना खाने भी गए थे ऐसे ही आए, कह रहे खुले ही नहीं है, या फिर वो कहते हैं कि 500 की जगह 300 ले लो, 400 ले लो, 100 रुपए काट के दे रहे हैं।
नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 500 और 1000 के नोटों को अचानक बंद करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी और तीखी होती जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने खास इसी बात पर संवाददाता सम्मेलन बुलाया और मोदी सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना की। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
लखनऊ में एक और जहां लोग सुबह से ही बैंकों में अपने पुराने नोटों को बदलने और जमा करने के लिए कतारों में खड़े थे, वहीं राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में इसके राजनीतिक नफे नुकसान पर चर्चा हो रही थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे पर खास तौर पर मुखर नजर आईं। शुरुआत की मायावती ने और उन्होंने सरकार के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई।
प्रधानमंत्री बन गया, पहले मुख्यमंत्री बन गया, ये बात जरूर कहते हैं, लेकिन जो सही मायने में गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कभी उनके दुख तकलीफ को समझा इन्होंने? ये कहते हैं कि हमने ये अघोषित हमने लागू करके हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। हमने पूरे देश में काले धन के ऊपर बहुत बड़ा तगड़ा फैसला लिया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने फैसला लिया उसी दिन से काला बाजारी बड़े पैमाने पर शुरू हुई है।
मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से पिछड़े वर्ग के लोगों, किसानों और छोटे व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार विदेशों में जमा काले धन पर कोई बात क्यों नहीं कर रही है। इससे पहले ऐसी खबरें भी आईं कि बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में कल रात भर गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। गाड़ियां क्यों आईं, इस बारे में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी इस मामले में सरकार से बेहद खफा दिखे। उन्होंने दावा किया कि काला धन के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ाई उन्हीं की पार्टी ने लड़ी है।
भाजपा ने कहा था कि विदेश से सरकार मंत्री काला धन लाएंगे, लेकिन वे मात्र 3,000-4,000 रूपये ला पाए। दबाव जब पड़ा जनता का काला धन लाई है तो जल्दी घूमे घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने आधी रात में। हम भी चाहते हैं कि चुनाव में काला धन न लगे। काला धन के खिलाफ सबसे खिलाफ कोई लड़ा है देश में भैया जी के बाद भी समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष किया। 100 से कम 1,000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तगादा।
मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि इस फैसले को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए ताकि गरीबों और किसानों को दिक्कत न हो।
आपको केवल चुनाव दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे, जबकि सबसे पहले आम जनता गरीब जनता को दिखना चाहिए। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस लिया जाए, हमेशा के लिए।
इस बीच राज्य भर में तमाम बैंकों में लोग लाइनें लगाए खड़े रहे। कहीं सर्वर काम नहीं कर रहा था तो कहीं भीड़ के कारण अफरा तफरी मच रही थी। जिन्हें 2000 के नए नोट मिले वो इस नोट के साथ सेल्फी ले रहे थे। वहीं तमाम लोग मेरे जैसे भी थे। लखनऊ में हजरतगंज के एक बैंक में 500 की 6 नोटों के बदले 100-100 की 30 पुरानी नोटें मिली और उन्हें लेने के लिए 3.5 घंटे तक लाइन में खड़े रहना पड़ा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों को सुनने का। चलते हैं राजेश जोशी और वंदना के पास।
आपकी राय, नमस्कार। स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं वंदना
जी। नमस्ते, नमस्कार।
वंदना का भी नमस्कार। और हमारे बहुत सारे श्रोता ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैं आजकल चिट्ठियों वाले कार्यक्रम आपकी राय क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं पिछले 2 या 3 हफ्ते हुए हैं शायद
जी।
मैं नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी दूसरी ऐसी जिम्मेदारियां थी जो मुझे पूरी करनी थी, लेकिन आज मौका मिला तो मैं आज पहली फुर्सत में स्टूडियो में आ गया। वंदना खींच के ले आई जी।
जी तो पहली चिट्ठी है अभय कुमार निराला साहब की बक्सर बिहार से।
जी क्या कहते हैं निराला साहब,
बोल रहे हैं कि आप ईमेल पोस्टकार्ड के साथ मेरे लिफाफे वाला पत्र भी शामिल कर लें।
अरे भाई निराला साहब, हो गया, आपका पत्र शामिल हो गया है और आप शिकायत करना तो आपका हक है और हमें अच्छा भी लगता है कि इतने नजदीक आप हैं हमारे कि आप शिकायत करते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है कि सिर्फ हम डाक से आई चिट्ठियों को ही इस्तेमाल करें या सिर्फ ईमेल को ही इस्तेमाल करें, मिला जुला हम कोशिश करते हैं कि सबकी बात आए
जी।
इनका कहना क्या है जरा एक वाक्य में बता दें क्योंकि चिट्ठी लंबी है, पूरी नहीं
जी।
पढ़ सकती हैं।
इन्होंने लिखा यह है कि दुनिया जहान कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर और वहां के आम आदमी के जीवन पर जरूर कुछ बात करें। हालांकि दुनिया जहान
का बिल्कुल विदेश है, वो देश ही जो कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय विषय होता है उस पर दुनिया जहान होता है, आप जानते ही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर तो हम कवर करते ही रहते हैं
जी। और अगला जो पोस्ट कार्ड है वो है महावीर स्वामी, डेहरा की ढाणी, ग्राम चूड़ना, सीकर राजस्थान से। लिखते ही रहते हैं ये। और इनका कहना है कि जो बेगम अख्तर पर विवेचना थी वो अच्छी थी और समीर आत्मज मिश्र जी यूपी से अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो
अच्छा, ये तारीफ कर रहे हैं। बेगम अख्तर पे रेहान फजल की विवेचना नहीं पसंद आई और समीर की रिपोर्ट पसंद आई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सुनते हैं सीकर राजस्थान में, पता नहीं, मैं तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि कैसे आप सुनते होंगे, लेकिन कभी मौका लगा तो हम भी सीकर आए, मुझे लगता है आपको खुशी ही होगी।
और एक ईमेल है, काफी लंबा चौड़ा है, अभिलाष हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखंड, आपके चेहरे पे कुछ चमक आ गई है।
जी हल्द्वानी तो बिल्कुल मेरा बचपन।
तो इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है अंग्रेजी में, हालांकि चूंकि इन्होंने कहा कि हिंदी टाइपिंग नहीं जानते हैं
जी।
और काफी ऐसा लगता है हमें बहुत पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सिलसिलेवार इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं जो आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत खुश नहीं है जैसे कि अमरीका राष्ट्रपति चुनाव को कवर किया गया, कि क्या आपके पास पहलू नहीं थे उस तरह से अलग अलग पहलू कवर करने के लिए। और ये इन्होंने कहा पहली बार नहीं, यूके इलेक्शन में और जो रेफरेंडम हुआ यूरोपियन यूनियन में उसमें भी ऐसा हुआ। हालांकि ये कह रहे हैं कि मेरे लिए आसान है यहाँ से बोलना, पर फिर भी इन्होंने अपनी एक तरह से,
मैं ये चिट्ठी ये इनकी ईमेल मैं पढ़ चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ बीबीसी हिंदी सेवा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बहुत गंभीर इनकी टिप्पणी है, ये हल्के में नहीं की है इन्होंने और ये पूरे बीबीसी पर बात कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या आप पत्रकार हैं या पत्रकारिता को बहुत नजदीक से देखते हैं?
बहुत एनालिटिकल
हैं, इसमें कड़वाहट नहीं है, इसमें समझदारी की बात कही है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी ये चिट्ठी हमने लंदन तक भेज दी है और इस अपने नोट के साथ कि ये गंभीर एक इनकी बात है तो इसको ध्यान दिया जाए।
और एक बात जरूर ये बोल रहे हैं कि आप कभी कभी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई बड़ी खबर हो, बजाय इसके कि खुद जाएं और ढूंढें।
ऐसा मतलब आपकी आलोचना है ये, आपका ऐसी रीडिंग होगी, लेकिन हम अक्सर जब कोई भी घटना होती है उसे तो कवर करते ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तो खुद योजना आयोग जो है बीबीसी का उसकी इंचार्ज हैं, तो हम लोग खबरों को तलाशते हैं, नई नई चीज़ें जो होती हैं उनको तलाशते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, फिर भी कमी तो कहीं ना कहीं रही जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नाम दोबारा से बताइए।
इनका नाम है अभिलाष।
आपका बहुत धन्यवाद अभिलाष, आगे भी लिखते रहेंगे और इसी शिद्दत के साथ लिखते रहेंगे ये मेरी उम्मीद है। कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में भी लिखें।
जी ये हैं आलोक सिंह अररिया से, इन्होंने ईमेल भेजा कि मेरा पहला ईमेल है और काफ़ी शिद्दत से सुनते हैं, और पर इनकी शिकायत है कि संडे दिन भर में नेता अभिनेता का इंटरव्यू न लें, क्योंकि ये सब अच्छे से जवाब तो देते नहीं हैं, और लेना ही है तो किसी साइंटिस्ट, डॉक्टर, किसी रिटायर्ड आर्मी अफसर, इन सब का लें।
मतलब
तो
इनका कहना है कि सिर्फ अभिनेताओं का या नेताओं का इंटरव्यू करने के बजाय जो जीवन के दूसरे हलकों में लोग होते हैं उनका भी इंटरव्यू किया जाए, तो अगर संभव हुआ तो हम कुछ पत्रकारों का, कुछ लेखकों का वो भी इंटरव्यू हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभिनेता हैं उनका इंटरव्यू भी सुनना चाहते हैं, वो कैसे बात करते हैं ये भी जानना चाहते हैं, इसलिए हम उनको भी हफ्ते में एक दिन देते हैं, पूरा हफ्ता तो नहीं देते
जी। और इसके अलावा एक जो अपनी दिक्कत बताई है, सुरेश अग्रवाल अग्रयाल लिखा है इन्होंने, केसिंगा उड़ीसा से।
सुरेश अग्रवाल हैं ये, शायद ये गलत नाम छपा हुआ है क्योंकि हमारे पुराने श्रोता है, क्या लिखते हैं तुरंत बता दीजिए।
ये कहते हैं कि पिछले दो महीने से हिंदी प्रसारण की चारों सभाएं ना तो वेबसाइट पर और ना ही ऐप पर लाइव सुनाई देती हैं।
ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं सुनता हूं,
कृपया कुछ कीजिए।
अच्छा, हो सकता है कि अगर ये आपके एंड पे आपके मोबाइल फोन में कोई दिक्कत है तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ सुन रहे हैं और हमें कोई समस्या नहीं हो रही है। सुरेश अग्रवाल जी, आप दोबारा से कोशिश कीजिए, अगर नहीं सुनाई पड़ता है तो फिर इस बात को हम आगे पहुँचाएंगे और तकनीकी दिक्कत दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। मुझे मालूम है आप दूसरी चिट्ठी पढ़ रही हैं। श्रोताओं, इजाज़त लेने से पहले आपको ये पता बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था इंटरपोल ने चीन के एक सुरक्षा अधिकारी को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन के गढ़ मूसल में इराकी सैनिकों की बढ़त फिलहाल धीमी हो गई है। सतलज यमुना नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार का पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 संवैधानिक है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। पिछले सप्ताह एक जांच रिपोर्ट में उन पर कई गड़बड़ियों के आरोप लगे थे, लेकिन जुमा ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया है नंद कुशवाहा ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।
हैं।